अब इसके बाद हम मजलिस का आगाज करते हैं और मजलिस के आगाज में उसूल इल्म का एक नया अंदाज और एक नया तरीका अपनाते हैं और वो तरीका मेरे नज़दीक बहुत ही आलीशान है और जिसके सुनने से और जिसके जानने से आप बेहद खुश हो जाए। आज आप अजीजान यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि आप एक नए अंदाज की मजलिस को अटेंड करें और ये मजलिस मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है, लेकिन हमने आज के लिए एक खसूसी तरीक़ा इख्तियार किया है। उसकी मिसाल और उसका नमूना हम आपके सामने पेश करते हैं। ये मजलिस या ये लेक्चर कुछ इस नौयत का है कि इसके अंदर हम आपको अल्फाज का मानवी रिश्ता बताना चाहते हैं कि अल्फाज के आपस में किस तरह लगाव है, कैसी मुनासिबत है और क्या रिश्ता है। इसके लिए हम आप की एक बहुत ही पसंद की आयत को लेते हैं और वो आपका बहुत ही पसंदीदा और बरगुजीदा मौजू है। ये मौजू मौजू इमामत है। हम अपने इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक ऐसी आयत को लेते हैं कि वो आयत कुरान के कल्ब के अंदर वाका है। ये सुनकर आपको जरा ताजुब होगा कि मैंने कहा कुरान का कल्ब, इसे क्या मुराद है? इसे ये मुराद है कि कुरान की कुछ खुसूसी सूरतें हैं, यानी सूरे, जिस तरह आपने सुन लिया है कि सूरह रहमान कुरान की दुल्हन है यानी उरूसुल कुरान, इसी तरह सूरह यासीन कुरान का कल्ब है। आप दीन की ये हिकमत भी जानते हैं कि अगर किसी सूरे का कोई खास नाम है या किसी आयत का कोई खुसूसी टाइटल है तो उसकी कोई वजह है। चुनांचे सूरह यासीन कुरान का कल्ब क्यों है, उसकी वजह हमारे नजदीक और इंशाल्लाह आपके नजदीक भी यह है कि सूरह यासीन के अंदर इमामत से मुताल्लिक एक ऐसी आयत मौजूद है कि वो आयत कानूनी कुल की हैसियत रखती है। उस आयत की वजह से पूरा सूरा कुरान के कल्ब यानी दिल का दर्जा रखता है और वो आयत ये है वकुल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। इस आयत का हवाला 36:12 है। अब हम इसी आयत से अपने नए काम का डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। वो ये कि इस आयत मुबारका में 6 मौजू हैं। सबसे पहले कुल है,
उसके बाद शय है, उसके बाद आशा है, फिर आशा के अंदर आशा ही ना यानी खुदा के फेल का जिक्र है कि उसी ने हर चीज को इमाम की जात में घेर कर रखा है। लिहाजा आशा के बाद अल्लाह का मौजू है, उसके बाद इमाम लफ्ज इमाम है जो एक मौजू है, फिर आखिर में मुबीन है। तो ये छह मौजू हो गए। इन छह मौजूआत का बराह रास्त इस आयत से और इमाम से मानवी रिश्ता करार पाया, या कि ये छह मौजू कंसर्न हो गए। इसलिए कि इस आयत के मानी व मफहूम के मुताबिक हर चीज को खुदा ने इमाम की जात के अंदर घेर कर रखा है। अब कुल एक लफ्ज है जिसके मानी सब चीज है या सारी चीजें हैं या हर चीज है। अब कुल शय एक ऐसा कुलिया है या एक ऐसा लफ्ज है कि जिसके घेरे से, जिसके दायरे से कोई चीज बाहर नहीं है। यानी अगर कुरान में वकुल लशाई फरमाया गया है तो इसमें सब चीज आती है, तमाम चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं और कोई चीज इससे बाहर नहीं है। अब चीज के फलसफे पर गौर करें, आया ये चीज यानी मादी चीजें हैं या रूहानी चीजें हैं या आखली चीजें हैं, आया चीज में मखलूकात का भी जिक्र है, आसमान जमीन का जिक्र है और क्या है। मैं तो ये कहूंगा कि कुल अशय एक ऐसा लफ्ज है, मुरक्कब लफ्ज, कंपाउंड वर्ड, कि इसमें तमाम कायनात मौजूदात की सारी चीजें आ जाती हैं, अखली चीजें, रूहानी चीजें और एक तरह से मादी चीजें भी। इसके अलावा खुदा से मुतालिक हर चीज भी, मसलन अर्श, कुर्सी या दूसरे लफ्जों में अलम, लव, खुदा की सिफात वगैरह। तो कोई चीज इस मौजू से बाहर नहीं है। इसमें हमने सिर्फ कुल लशाई के मानी पर गौर किया और ये जरूरी था। अब हम इन छह मौजूआत में से हर एक को कुरान में अलग अलग देखना चाहते हैं। चुनांची जब हमने देखा तो मालूम हुआ कि कुल का जो लफ्ज है वो 325 बार कुरान में आया है। कुल जिसका इस आयत से रिश्ता है, कुल जिसका इस आयत में जिक्र हुआ है, वो कुरान में 325 बार आया है। इसकी तलाश कुरान में हम क्यों करते हैं, ये सवाल है। इसलिए कि कुल का इस आयत में जिक्र हुआ है, लिहाजा कुरान में इस आयत के अलावा जहां भी लफ्ज कुल आएगा और जैसा भी वहां जिक्र होगा उसका इस आयत से कंसर्न होगा, रिश्ता होगा, एक तफसील होगी, एक वजाहत होगी, एक तावील होगी। सो कुल का लफ्ज जिसका इस आयत में जिक्र हुआ था कुरान में 325 बार आया है। इसके बाद शाही है जो चीज के लिए आता है, ये शाही 202 बार है। उसके बाद अहस्वा है, ये सिर्फ 11 दफा है। यानी आशा कौन सा लफ्ज है? तो खुदा ने जो फरमाया था कि उसने इमाम की जात के अंदर तमाम चीजों को महदूद कर रखी है, तो ये लफ्ज महदूद या कि घेरने के मानी में जो एहसास है वो कुल 11 दफा आया है। इसके बाद खुद लफ्ज इमाम है, तो ये लफ्ज इमाम कुरान में हर तरह से 12 दफा आया है लफ्ज इमाम। उसके बाद मुबीन का लफ्ज, तो ये 106 दफा आया है। उसके बाद लफ्ज अल्लाह है, तो ये 980 मरतबा आया है। दरमियान में थोड़ी सी वजाहत करने की जरूरत है, वो ये कि हमने इन अल्फाज को क्यों लिया? इसलिए लिया कि कुरान का उसूल है कि एक आयत के अंदर जो बात समझ में नहीं आती है वो बात दूसरी आयत में समझ में आती है। यानी कि एक आयत दूसरी आयत की तफसीर हुआ करती है। चुनांचे इमाम मुबीन का क्या मतलब? हो सकता है कि इतनी कोशिश के बावजूद और इतने तर्जमों के बावजूद हमने इमाम मुबीन जो इस आयत में है का तर्जुमा अच्छी तरह से नहीं समझ लिया हो, क्योंकि हम इमाम मुबीन का तर्जुमा जाहिर इमाम करते हैं। अगर मुबीन के कुछ और मानी भी हैं तो वो भी इस मानी के साथ साथ जायज और मुनासिब करार पाएंगे। चुनांची हम देखते हैं कुरान में मुबीन के दूसरे मानी जो हैं वो बोलने वाले के हैं। मुबीन के मानी जाहिर के भी सही हैं और मुबीन के मानी बोलने के भी दुरुस्त है। बस इमाम मुबीन का मतलब इमाम जाहिर हो या इमाम मुबीन के मानी इमाम नातिक हो। इमाम नातिक का मतलब यानी बोलने वाला इमाम। इससे इस माली कॉन्सेप्ट की बड़ी रोशनी के साथ वजाहत हो जाती है कि मुबीन में बोलने के मानी है, और ये मतलब साफ हो जाता है जहां हमारे दूसरे भाई इमामी मुबीन से लौही महफूज मुराद लेते हैं, तो वहां लफ्ज इमाम के अलावा मुबीन से भी ये पता चलता है कि ये जो चीज है वो बोलने वाली चीज, यानी बोलने वाला इमाम। मगर लौही महफूज बोलने वाली नहीं करार पा सकती। लौही महफूज अपनी जात में अगर चीज बोलने वाली भी हो लेकिन उस तक इंसानों की रसाई नहीं होती है, लिहाजा उसके बोलने या अन्य बोलने का कोई तायुन नहीं होता है। और जहां तक बोलने के मानी है वो ऐसी चीज से मुतालिक है जो इंसानों के साथ गुफ्तगू कर सके और बोल सके, और ऐसी हस्ती इमाम हैं जो बोलते हैं। तो इमामी मुबीन के मानी इमामी जाहिर के भी हैं और इमामी मुबीन के मानी इमामी नातिक यानी बोलने वाले इमाम के भी हैं। आपने देखा कि हमने जो यहां तरीका इख्तियार किया है जो मानवी रिश्ते का मौजू है उसको हमने इख्तियार किया है, इससे इल्मी तौर पर बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तो ये कि हमको पता चलता है कि इमाम की जात से हर चीज वाबस्ता किस तरह है, जिसके लिए खुदा ने फरमाया कि उसने हर चीज को इमाम से वाबस्ता किया है। हर चीज को इमाम की जात के अंदर रखा है, इमाम के नूर के अंदर रखा है, तो खुदा ने गोया कि हर चीज को इमाम के दामन के साथ बांध लिया है। जिस तरह मिसाल के तौर पर इस कायनात के अंदर एक बहुत बड़ी रोशनी का सर चश्मा है और वो सूरज है, आप अगर हिकमत की निगाह से देखें तो मार्जिक तौर पर तमाम चीज को सूरज से वाबस्ता पाएंगे। वो इस तरह कि अवल तो देखें कि सूरज की किरणें किस तरह इस वसी वाली इस कायनात में फैली हुई है। इस मिसाल में गोया कि हर किरण जो है वो सूरज से वाबस्ता है। दूसरा ये कि आप देखते हैं कि हर चीज का जो फायदा है मादी तौर पर सूरज से, हर चीज को रोशनी चाहिए, हर चीज को हीट गर्मी चाहिए, हर चीज को रंग चाहिए, हर चीज को एनर्जी चाहिए। इस तरह दुनिया की जितनी चीजें हैं वो एक एक रस्सी के साथ सूरज से बंधी हुई हैं, एनर्जी की रस्सी से, रोशनी की रस्सी से, गर्मी की रस्सी से और नशोनुमाई की रस्सी से और हिवानी रूह की रस्सी से, तमाम चीजें सूरज से वाबस्ता है। इसके अलावा सूरज बजाय खुद इतना बड़ा नहीं है जितनी की कायनात, लेकिन फिर भी इस छोटे से सूरज ने, मैंने छोटा यानी इस वसी कायनात की निस्बत से कहा, तो इस छोटे से सूरज ने कायनात के हर चीज को अपनी जात के अंदर यानी अपनी रोशनी के समंदर के अंदर जो बो लिया है, राख कर लिया है। तो ये वकुल शहीना स्वयना होगी इमामी मुबीन की एक मादी मिसाल है, जिसको कोई एली बसीरत समझ सकता है और बावर भी कर सकता है। कोई भी साइंसदान इसे इनकार नहीं करेगा कि मादी चीजें जो हैं वो सूरज से वाबस्ता है। तो उसके लिए मैंने दो किस्म की मिसाल पेश की। एक तो ये कहा कि हर चीज एक रस्सी से सूरज के साथ बंधी हुई है, और दूसरे मैंने ये कहा कि ये सारी कायनात रोशनी के समंदर में डूबी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से इमाम एक शख्सियत है, और जाहिर में ऐसा नहीं है कि इमाम एक समंदर हो और जिसके अंदर हर चीज डूब जाए, और इस माना में कहा जाए कि खुदा ने हर चीज इमाम की जात के अंदर महदूद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हाँ मैं कह सकूंगा कि वो एक समंदर है। किस चीज का समंदर है? अकल का समंदर है, इल्म का समंदर है और रूह का समंदर है। और फिर मैं ये भी कहूं कि वो जिस्म लतीफ का समंदर है। आपको याद होगा मैंने कभी कहा था कि जिस्म लतीफ यानी हॉस्टल बड़ी कितनी बड़ी है। मैंने कहा था कि ये कायनात जितनी बड़ी है हॉस्टल बड़ी इतनी बड़ी है। मैंने कभी ये भी कहा था कि किसी दरवेश ने दीवाने की तरह यानी हॉस्टल बॉडी का सवाल किया इमाम से, तो इमाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हॉस्टल बॉडी एक है और इस वक्त वो हॉस्टल बॉडी मेरे अर्जन जानशीन या इमाम के पास। इससे मेरा मकसद ये है कि ये साबित करना चाहता हूं कि इमाम की एक बॉडी भी है जो लतीफ जिस्म है, जो सही दाइया है, और वो इस कायनात के बराबर है, और इसी का नाम बिहिश्त है। आप कभी मुझसे सवाल करें मैं आपको वो आयत बताऊंगा कि बिहिश्त का साइज क्या है। वो कि बिहिश्त रूहानी है लेकिन बिहिश्त का एक जिस्म है, और वो जिस्म यही जिस्म है जिसका मैं आप जिक्र करता हूं, और उसका एक साइज है। और साइज इस कायनात के बराबर, ज्यादा दूर नहीं जाएं, वापस से चलें और ये कहें कि ईमान के तीन समंदर हैं। एक समंदर अकल का है जिसका स्पेशल नाम अकल कुली है, दूसरा समंदर रूह का है उसका नाम रूहुल अरवा भी है और उसका नाम रूह आजम भी है और उसको नफ्स कुली भी कहा जाता है। तीसरा समंदर जिस्म लतीफ का है और वो जिस्म लतीफ इस कायनात के बराबर है। रसाइल अखवान सफा में ये जिक्र आया है कि जिस्म कुली पर नफ्स कुली मुहित है, यानी जिस्म कुली को नफ्स कुली ने अपनी आगोश में ले लिया है और नफ्स कुली पर अक्ल कुली मुहित है। इसकी मिसाल इंसान अपनी जात में भी पा सकता है कि देखें कि हमारा एक कसीब जिस्म है, इस पर हमारी रूह मुहित है, यानी रूह ने हमारे जिस्म को कंट्रोल में गिरफ्त में ले लिया है और रूह को अकल है। ये बात ऐसी है जैसे ग्राउंड पर चबूतरा है और चबूतरे पर ताख्त। ग्राउंड जिस्म, चबूतरा और रूह, ताख्त अकल। तो जो बात आलमी दीन में है वो बात जुज्वी तौर पर यहां हमारी हस्ती में होनी चाहिए, यानी उस आलम की जो कैफियत हो, जो मिसाल हो, तो जैसा वो आलम हो तो ये छोटा आलम भी ऐसा होना चाहिए। हम इस छोटे आलम को देखकर आलम दीन की शिनाख्त कर सकते हैं। चुनांचे यहां एक जमीन है जो हमारे यीशु, एक चबूतरा है इसको डाइस कहें, स्टेज कहें और कुर्सी कहें, लेकिन कुर्सी के लफ्ज में आपको जरा उलझन होगी। कुर्सी के दो माने, एक वो कुर्सी जिस पर बैठते हैं, ये नहीं, एक वो कुर्सी जो मकान की कुर्सी होती है, उससे इससे कुर्सी से चबूतरा मुराद है, डाइस मुराद है। फिर इसके बाद ता, तो मैंने अपने जिस्म की बात खत्म की, अब आलम दीन की बात करता हूं। इस आलम दीन की बात में लतीफ जिस्म ग्राउंड है, इमाम का लतीफ जिस्म, इमाम की रूह कुर्सी है, स्टेज या डाइस है, चबूतरा। इमाम की अकल ताख्त है जिसको अरबी जबान में, कुरान की जबान में अर्श कहा जाता है। अब कुल शय की मैं नए अंदाज से आपको वजाहत करना चाहता हूं। इस वजाहत में कुल शय से आप पूरी कायनात मुराद, क्योंकि इसमें यानी छोटे छोटे जरात सब आते हैं। कुल शय सारी जाहिरी बातिनी कायनात, कुल शय ना स्वयं उठी इमाम मुबीन। खुदावंद आलम फरमाता है कि उसने तमाम चीजों को इमामी नातिक की जात के अंदर महदूद कर दिया, तो यह सही है कि अक्ल कुल इमाम की जात है, उसमें नफ्स कुल महदूद है, नफ्स कुल में जिस्म लतीफ महदूद है और जिस्म लतीफ में तमाम दुनिया की चीजें महदूद है, तमाम चीजें महदूद है और कोई चीज इससे बाहर नहीं है। ये इन तशरीहों में से एक तशरीह है जो इस आयत से मुतालिक है। अब ये काम किसने किया? खुदा ने किया। खुदा ने जब ये काम किया तो खुदा का फेल करार पाया, यानी एक्शन। फिर इस आयत से खुदा का ताल्लुक हुआ क्योंकि इसमें खुदा का फेल पाया जाता है, लिहाजा हमने लफ्ज अल्लाह को लिया جو قرآن کے اندر 980 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے, اور جہاں پر ان تمام جگہوں میں سے جہاں پر لفظ اللہ موجود ہے تو اس میں آپ اس کلیے کو نہ بھولیے گا کہ اسی اللہ نے یہ کام کیا ہے, یہ تمام چیزوں کو امام کے نور کے اندر اس نے محدود کر رکھی ہے. تو لفظ اللہ کے علاوہ خدا کے جتنے دوسرے نام ہیں وہ اس موضوع سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو اللہ کے نام ہیں, اور اس میں اللہ کے ساتھ ان تمام ناموں کا لگاؤ ہے. بلکہ بعض لوگوں کے مطابق اللہ اسم ذات ہیں اور دوسرے نام اسم صفات ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اسم اللہ بھی اسم علن نہیں ہے, اسم صفت ہے, اسم ذات نہیں ہے, کیونکہ یہ الہ سے ہے. بہر معنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تمام چیزیں معنوی طور پر اس آیت سے کس طرح متعلق ہیں. اب جہاں کل شئین کا ذکر آئے گا تو اس میں بھی یہی بات ہوگی. مثال کے طور پر ایک آیت میں فرمایا گیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. یہ کل شئی کا دوسرا لفظ ہے, یعنی مترادف ہے, اور کوئی چیز نہیں مگر اس کے خزانے میرے پاس ہیں, اور ہم ان خزانوں میں سے جو چیزیں نازل کرتے ہیں وہ وقت اور مقدار اور حالت اور علم کو دیکھ کے نازل کرتے ہیں. دیکھا آپ نے کہ اس آیت کے اندر فرمایا گیا تھا کہ ہر چیز امام کی ذات میں ہے. دوسری آیت جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی, اس میں فرمایا گیا کہ تمام چیزیں خدا کے خزانوں میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام چیزیں خدا کے خزانوں میں ہیں یا کہ تمام چیزیں امام کی ذات کے اندر ہیں؟ کیا یہ دو الگ الگ مقام ہو سکتے ہیں, یا یہ کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہو سکتے ہیں, یا خدا کبھی کچھ اور کبھی کچھ فرما سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس بات کی نفی کریں گے کہ خدا کبھی کچھ اور کبھی کچھ نہیں فرماتا ہے. خدا حق و صداقت والا ہے, خدا برحق ہے اور خدا حق ہے. خدا کا ایک نام حق ہے, اور حق کے معنی راستی, سچائی, ٹروتھ. جب خدا حق ہے تو وہ حق کے سوا کچھ بھی نہیں فرماتا ہے, اور اس میں حق یہ ہے کہ خدا کے خزانے اور امام کی ذات ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں. تمام چیزیں خدا کے خزانوں میں ہیں, تمام چیزیں امام کی ذات میں ہیں, تو یہ ایک ہی بات ہے. دیکھا آپ نے کہ ہم نے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی اہمیت کی طرف توجہ دی ہے, اور عام طور پر اس آیت کی اہمیت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے. حالانکہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کو ہم نے عبادت بندگی میں اور اپنے اصولات میں بھی اور اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ کتابوں میں بھی اور شیعی تفاسیر میں بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, और एक अहमियत जो बहुत जनरल है यानी सबके नजदीक इसकी अहमियत है, इस आपको साबित करके बताया कि ये कल्ब कुरान के अंदर है, कल्ब सेंटर, कल्ब दिल, कल्ब मरकज। तो जो चीज कुरान के दिल की हैसियत से होगी उसमें कोई बहुत बड़ा भेद होगा, और इंशाल्लाह वो बहुत बड़ा भेद आज आपके सामने है। इससे पहले मजालिस में आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, क्या आपको हमने नहीं बताया था? आज बताते हैं कि कुरान का एक दिल है, जिस तरह इंसान का एक दिल है, और दिल की बहुत बड़ी अहमियत होती है। और कुरान के दिल में क्या राज है? इस इंसान के दिल का जिक्र इसलिए आता है कि कोई बात पोशीदा होती है, कोई भेद होता है, जिसको अरबी में सिर कहते हैं, और जमा असरार है। तो कुरान के दिल में यह बात है कि उसके अंदर एक ऐसी आयत है जो बहुत ही हिकमत वाली। अब जिस तरह इस कुरान के अंदर हमको कॉन्सेप्ट दिया गया, तसव्वुर दिया गया, उसूल हमको दिया गया कि हर चीज इमाम की जात के अंदर है, तो जरा हम इसको मानते हुए कुरान की तरफ जाकर तजर्बा करें कि कुरान के अंदर जो हर चीज है वो किस तरह इमाम की जात के अंदर है। कुरान भी तो एक दुनिया है ना, कुरान भी तो एक आलम है, उसके अंदर भी बहुत सी चीजें हैं। उसके अंदर जो चीजें हैं वो अल्फाज हैं, उसके अंदर जो चीजें हैं वो कलिमात हैं, वर्ड्स हैं, उसके अंदर जो चीजें हैं वो मानी हैं, उसके अंदर जो चीजें हैं वो हिकमतें हैं, उसके अंदर जो चीजें हैं वो भेद हैं। तो क्या सब भेद इस एक भेद के अंदर जमा हो सकते हैं? सारे अल्फाज इस आयत के अंदर आ सकते हैं, समो सकते हैं? इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसमें क्या ताजुब है? सबसे बड़ा वर्ड जो है अल्लाह, और अल्लाह को इस लफ्ज के साथ हमने मुताल्लिक पाया, कंसर्न्ड पाया, वो ये कि आसवाई ना हो का जो एक्शन है वो अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया है। जब अल्लाह ने किया है तो अल्लाह अपनी जात और सिफात के साथ और अपने हर चीज के साथ, अपनी सल्तनत के साथ और अपने नूर के साथ इस आयत से वो कंसर्न हो गए। और अगर हम जुरात करके आगे बढ़ते हैं और चीज की तशरीह करते हैं, चीज क्या? खुदा की सिफात का नाम भी चीज हो सकता है, खुदा का नूर भी चीज है, खुदा का दीदार भी चीज है, खुदा की मारिफत भी चीज है, खुदा का अर्श भी चीज है, खुदा की कुर्सी भी चीज है, अजल अबद ये भी चीजें हैं, खुदा का कौल भी चीज है, कुरान भी चीज है, आयात भी चीज है। तो हम जितने भी सवाल करेंगे उनका जवाब इस बात में मिलेगा, हाँ ये सब खुदा की चीजें हैं। अगर इस सिलसिले में मजीद वजाहत की जरूरत है तो उसके लिए जो अभी आपको आयत सुनाई गई थी उसका सहारा लेते हैं। وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ, और कोई चीज नहीं है जो हमारे खजाने से बाहर हो। हर चीज यानी तमाम चीजें हमारे खजानों में हैं। अब आप ही फैसला करके बताएं कि आया ये चीजें जो खुदा के खजानों में हैं अदना चीजें हो सकती हैं या आला चीजें हो सकती हैं? खुदा के खजानों में जो चीजें हैं उनसे क्या मादी चीजें मुराद हो सकती हैं? जैसे पत्थर है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, क्या हम इन चीजों को मुराद लें या खुदा की चीजें खुदा के तौर पर माने और कहीं खुदा की चीजें कुरान, खुदा की चीजें अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, खुदा की चीजें उसकी सिफात, खुदा की चीजें उसका नूर और सब चीज। तो खुदा के खजानों से जो इमाम की जात के अंदर हैं कोई चीज बाहर नहीं है, कोई चीज बाहर नहीं है, और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट उससे बाहर है, वो खुदा का कॉन्सेप्ट है। अगर हम खुदा को चीज नहीं मान रहे हैं तो खुदा इस खजाने का मालिक करार पा सकता है एक लिहाज से, और दूसरे लिहाज से खुदा खुद भी इस खजाने में हो सकता है। मैं दोनों बातें अलग अलग आपको करना चाहता हूं कि किस लिहाज से खुदा इस खजाने से बाहर है और किस एतबार से खुदा खुद भी इस खजाने के अंदर है। अगर आप बावर करते हैं कि दो आयतों के कंपेयर से जो मैंने बताया कि दो जगहें ऐसी नहीं हो सकती है कि इसमें भी सब चीजें हों और उसमें भी सब चीजें हों, यानी एक ही इमाम की जात में सब चीजें हों और खुदा का खजाना इससे अलग हो और सब चीजें उसमें भी हों, ये पार्टीशन नामुमकिन है, ऐसी कोई लॉजिक नहीं। और लॉजिक ये है कि जो खुदा का खजाना है वो ही इमाम की जात है और उसी इमाम की जात के अंदर सब चीज होने की एक अलग तशरीह बताई गई। तो ऐसी कई तशरीह आपको मिलेंगी और तीसरी तशरीह में आपको बताऊंगा कि वकुल शैइन अहसाइना किताबा, और हमने हर चीज एक किताब के अंदर महदूद कर रखी है। वो आयत यहां है, कुरान यहां पर मौजूद है, इंजील यहां पर मौजूद है, अभी आपको बता सकते हैं। तो क्या किताब इमाम की जात से अलग होकर और उसमें सब चीज अलग हो सकती है? ये बात नहीं। इस सिलसिले में एक और हदीस की मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूं। अव्वल मा खलक अल्लाह कलम, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अव्वल मा खलक अल्लाह आखर। तो रसूल ने तीन चीजों का जिक्र किया और इनमें से हर चीज के बारे में अलग अलग बताया कि सबसे पहले खुदा ने कलम पैदा किया, फिर फरमाया कि सबसे पहले खुदा ने अकल पैदा की, फिर फरमाया कि सबसे पहले खुदा ने मेरे नूर को पैदा किया। तो तीन चीजें फास्ट तो नहीं हो सकती है ना। आप किसी खेल में या किसी कंपटीशन में जजिंग करते हैं तो किस तरह आप तीन को एक साथ यानी फर्स्ट करार दे सकते हैं? ये तो बात नामुमकिन है। इसका मतलब यह हुआ कि अकल कहें, कलम कहें और नूरी मोहम्मद कहें तो एक ही चीज के तीन नाम। इसकी वजाहत हमने किसी किताब में की है, वो किताब आपको मालूम है, वो सिलसिला ही नूरी मोहम्मद है। तो आइए लौटकर, कुरान में भी ये बात है, किताब में सब चीज है, ठीक है, किताब इमाम की जात है, खुदा के खजानों में सब चीजें हैं, ठीक है, और इमाम की जात खुदा का खजाना है। अब वापस आइए, सवाल कहां से पैदा हुआ था? सवाल मुझे याद है, ये पैदा हुआ था और जो कहा गया था कि आया खुदा इस खजाने से बाहर है या खुदा इस खजाने के अंदर है या खुदा खुद ये खजाना है, ये बहुत यानी बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा राज भी है। क्या हम हदीस कुदसी को बावर करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर बावर करेंगे। क्या आपको याद नहीं है कि हम बार बार कहते हैं कि खुदा ने फरमाया है कि जो उसको पहचानेगा उसके लिए खुदा एक बड़े खजाने के तौर पर मिलेगा। इस हदीस कुदसी ने हमारे सवाल के जवाब को मुहैया कर दिया और कहा कि मुमकिन है कि खुदा एक खजाने की हैसियत से हो। सवाल हल हो गया, नुमाइंदगी हो या बिजात खुद खुदा हो, कि खजाना जो है वो खुदा के दर्जे में है। हम इससे ज्यादा इसकी वजाहत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें इस पर ज्यादा जोर देने की इजाजत नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए हमने इतना बताया। चले यहां से हम इस मौजू में आगे बढ़ते हैं और कुरान से मुतालिक ये बात है कि कुरान की हर चीज इमाम की जात के अंदर है। हमने इसको रिपीट किया है ये कहने के बावजूद कि कायनात और मौजूदात की हर चीज इमाम की जात में है, लेकिन अपनी मजीद तसल्ली के लिए और अपने इल्म को मजबूत करने के लिए या आपको अच्छी तरह से वाजे करने के लिए हमने फिर कुरान को सामने रखा है और ये सवाल उठाया है कि कुरान की हर चीज किस तरह इमाम की जात के अंदर है। वो इस तरह से है, ये कुरान के अंदर मौजूआत हैं, कुरान के अंदर अल्फाज हैं, कुरान के अंदर हिकमतें हैं, कुरान के अंदर इल्म के खजाने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मौजू जिसमें दीगर मौजूआत समो जाते हैं वो इमामत का मौजू है। इसलिए कि आप देखते हैं 124,000 पैगंबर आए और उनका जो सबसे बड़ा मौजू है वो खिलाफत है। खुदा ने सबसे पहले खिलाफत का जिक्र किया, उसने फरमाया और फिश्तों के सामने ऐलान किया कि वो इस कुरई आर्स पर अपनी जानशीनी को कायम रखना कायम करना चाहते हैं, वो अपना नुमाइंदा और खलीफा बनाना चाहते हैं। लिहाजा ये जो मौजू ये खिलाफत है असल में मौजू इमामत है, क्योंकि खिलाफतें दो हैं, एक हकीकी है एक मजाजी है, लेकिन खुदा के नजदीक जो मजाजी है वो मुराद नहीं है, जो हकीकी खिलाफत है वही मुराद है। और हकीकी खिलाफत क्या है? इमामत है। जिस तरह आप देखते हैं कि एक मौजू जो है दूसरे मौजू में बदल जाता है, जिस तरह कलम के मानी नूर के होते हैं और नूर के मानी अकल के होते हैं, जिस तरह इमामत के मानी खजाने खुदा के होते हैं और फिर कभी इमामत के मानी किताब के होते हैं, इसी तरह खिलाफत के मानी इमामत के होते हैं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं कुरई अर्ज पर एक जानशीन मुकरर करने वाला हूं। इसे क्या मुराद? खलीफा से मुराद पैगंबर और खलीफा से मुराद इमाम। पैगंबर और इमाम जो है दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, ये बादशाह और वजीर की तरह है। बादशाह और वजीर को मिलाएं तो बादशाहत बनती है, पैगंबर और इमाम को मिलाएं तो खिलाफत बनती है और इमामत बनती है। इमामत का दूसरा लफ्ज खिलाफत, खिलाफत का दूसरा लफ्ज इमामत, और वो खिलाफत जो लोगों ने बनाई है वो मजाजी है, हकीकी नहीं है, वो खुदा की खिलाफत नहीं है। इसका जिक्र इसमें नहीं। खुदा की खिलाफत वही है कि जिसके सामने फरिश्ते झुके, कि जिससे इनकार करने से कोई इबलीस और शैतान खड़ा पाए, ये खुदा की खिलाफत का मेयार है। और दूसरी खिलाफतें जो लोगों ने बेजाम खुद कायम की, उसमें न तो कोई इबलीस करार पाया ना फरिश्तों ने ऐसी खिलाफत के सामने सर झुकाया। खुदा की हिकमत बहुत अजीब है कि वो कोई काम करता है तो उस काम का मेयार भी होता है, कसौटी भी होती है, उसको परखना भी होता है, एक शुऊर वाला इंसान भी उसको समझ सकता है। तो खिलाफत इलाहिया कहें या इमामत उज़्मा कहें, तो ये सबसे बड़ा मौजू है, सबसे बड़ा मौजू है। इसलिए यहां फरमाया गया वकुल शाइना स्वाइना उफी इमामी मुबीन। मेरी गुजारिश ये होगी कि आप पैगंबर और इमाम को मिलाकर इमाम मानना, पैगंबर इमाम से अलग नहीं है। कभी लफ्ज इमाम का इतलाक पैगंबर पर भी हो सकता है। आप इस्माइली मजहब की सोर्स बुक्स को देखेंगे तो उसमें पैगंबर के लिए लफ्ज इमाम आया है। आप कभी भी महदूद नजर नहीं होना, और यही वजह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम कहा गया, और एक लिहाज से इब्राहिम को बनी नौ इंसान के लिए अवलीन आखरीन में इमाम करार दिया गया। एक बात जानने की है, जब खुदावंद किसी भी मानी में बाउंड्रीज नहीं लगाता है तो वो मानी इस कदर वसी 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 हो जाते हैं कि जमान और मकान को अपने अंदर समो लेते हैं। वैजिबतला इब्राहिम रब्बहु कि कलिमात इंफातम महुन्ना काला इन्नी जायलु कलिन्नासी इमामा। खुदावंद आलम ने इब्राहिम को चंद कलिमात में आजमाया, यानी बोल देने के बाद कई इसमें आजम से वो आगे बढ़े तो उसकी रूहानियत मुकम्मल हो गई। तो खुदावंद आलम ने उनसे खिताब करके फरमाया कि मैं तुमको लोगों का इमाम बनाने वाला हूं, इन्नी जायलु कलिन्नासी इमामा। मैं बड़ी खैरख्वाही से और खुलूस से मैं आपको बताऊंगा, और बहुत दानिशमंदी की बात बताऊंगा जो आपके लिए काम आए। ये कि देखे नास, इन्नी जायलु का लिन्नासी इमामा, इस लफ्ज नास में लोग, मैं लोगों के लिए तुमको इमाम बनाता हूं। इस लफ्ज में बाउंड्रीज नहीं है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। लिहाजा इस लफ्ज नास को जाना चाहिए माजी की तरफ आदम के जमाने में, और आना चाहिए मुस्तकबिल की तरफ कियामत तक। और इसका फलसफा यूं है कि मैं तुमको अव्वलीन और आखरीन पूरे दौर में तुमको इमाम बनाना चाहता हूं। और इसके मानी यूं है कि मैंने तुम्हारे आबा व अजदाद को माजी में इमाम बनाया है, और तुमको हाल में इमाम बनाता हूं, और मुस्तकबिल में तुम्हारी औलाद को इमाम बनाता हूं। इसमें तो पूरे सिलसिले की बात है। कहां से मैंने ये मानी निकाले? आप कहें, बिला तामुल कहें, उसे कहें कि आप यानी इसमें बात समझ में नहीं आती। मैं उसूख से कहता हूं कि नास जो लफ्ज है वो महदूद नहीं है, और जब खुदा अर्ज कहता है तो इसे कोई शहर मुराद नहीं होता है, कोई इलाका मुराद नहीं होता है। अर्ज से पूरी जमीन, सारा ये सयारा ये जमीन मुराद होता है। इन्नी जायलो का लिन्नास इमामा, अगर इब्राहिम के इमाम बनाने में लोगों के लिए फायदा है तो उन लोगों का क्या कसूर जो आगे गुजरे, और उन लोगों की क्या गलती, क्या गुना जो मुस्तकबिल में आने वाले हैं? तो मंतिक भी यही बनती है कि नास जो है वो अनलिमिटेड है, इससे तमाम बनी नो इंसान मुराद हैं, आदम भी इसमें शामिल है और इब्ने आदम भी इसमें शामिल है। और फिर ये किस तरह मुमकिन है कि इब्राहिम जो है वो पूरी इंसानियत के लिए इमाम बने? इस तरह मुमकिन है, इस तरह मुमकिन है कि इब्राहिम के आबा व अजदाद इमाम थे लोगों के लिए। इब्राहिम अपनी जिंदगी में इमाम थे, और इब्राहिम की नस्ल से कियामत तक इमामत का सिलसिला चला। खुदा के कलाम में एक ऐसी मंतिक होती है, एक ऐसी लॉजिक होती है कि उसमें जरा भी नुक्स नहीं होता है। देखें कि दुनिया की मंतिक चलाने वाले किस कदर एहतियात करते हैं और कितनी बारीकी में उतरते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं कि उसमें जरा भी डिफेक्ट नहीं होने देते हैं। लॉजिक, लेकिन खुदा की लॉजिक कैसी होगी? खुदा की लॉजिक ये, खुदा की लॉजिक ये, खुदा की मंतिक ये कि जिसकी आंख है, जिसके कान है, जिसकी अकल है, उसके सामने खुदा ने फरमाया कुरान के अंदर कि इब्राहिम के नाम से पूरे दौर की इमामत का ऐलान हो गया, तो फिर इमामत बहुत बड़ा मौजू करार पाया। मैं इस आयत के रब से बाहर नहीं हूं,